पिछले अध्याय में आपने देखा कि वे रूही के कभी ऊपरे लिप को किस करता, तो कभी निचले लिप को, तो कभी रूही के होंठों पर बाइट करता, तो कभी उसे तेजी से तुमने लपता था। वे सच में रूही के होंठों को स्ट्रॉबेरी समझकर बस खाए ही जा रहा था। रुकने का तो वे नाम ही नहीं ले रहा था, जैसे वे अब रुकना ही ना चाहता हो और पूरी जिंदगी बस इसी तरह रूही को प्यार करना चाहता हो चैप्टर नंबर 138। अब आगे, मगर इस बात के अनजान कि उसके इतना पैशनेट होकर किस करने से छोटी सी और नाजुक सी रूही की हालत पूरी तरह से खराब हो गई है। रूही जिसे पहले ही रुद्र के रूड बिहेवियर की वजह से अपने शरीर में जलन के साथ साथ दर्द हो रहा था, अब रुद्र के यूं लगातार आधे घंटे से बिना रुके पागलों की तरह किस करने से वे लगभग बेहोशी में जा रही थी। उसकी आंखें अब धीरे धीरे बंद होती जा रही थी, क्योंकि अब उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसे सांस नहीं आ रही है। वहीं उसका हाथ, जो कब से रुद्र को रोकने के लिए चल रहे थे, अब वे भी बेजान हो गए थे। वे रुद्र को रोकना चाह रही थी, मगर ना तो उसके हाथ उसका साथ दे रहे थे और जुबान तो रुद्र ने पहले ही बंद करते रखी हुई थी। रूही यूं ही अपनी अधखुली आंखों से रुद्र को अब भी किस करता हुआ देख अपनी आंखें पूरी तरह से बंद कर लेती है, क्योंकि सांस ना ले पाने की वजह से वे बेहोश हो गई थी। वहीं रुद्र रूही को किस करने में इतना डूबा हुआ था कि उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि उसकी रूह बेहोश हो चुकी है। वे तो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। इसी तरह 10 मिनट और किस करने के बाद जब रुद्र पूरी तरह से रूही के होंठों से सेटिस्फाई हो जाता है और उसे खुद भी सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है, तब जाकर वे रूही के होंठों को आखिरी बार स्मूच कर उसके होंठों को छोड़ देता है। अब उसके चेहरे पर बिल्कुल गुस्सा नहीं था, वे पूरी तरह से शांत हो गया था। तभी उसकी नज़र रूही के चेहरे पर पड़ती है। रूही को यूं बेहोश देख रुद्र के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आ जाती है और वे रूही के दोनों बंद आंखों को बारी बारी अपने होंठों से छूते हुए उसी मुस्कुराहट के साथ बोला, माय इनोसेंट रूह, तुम तो मेरे एक किस में ही बेहोश हो गई। जब मैं तुम्हें पूरी तरह से अपना बनाऊंगा, जब मैं तुम्हारे अंदर समाऊंगा, तब तुम्हारी क्या हालत होगी रूह? रूह, तुम काफी कमजोर हो। अगर तुम इसी तरह नाजुक रही तो मैं तुम्हें कभी भी पूरी तरह से प्यार नहीं कर पाऊंगा। लगता है रूह, मुझे तुम्हारी डाइटिंग का अच्छे से ख्याल रखना होगा ताकि तुम स्ट्रांग बन सको। इतना बोल वे रूही के होठों को दोबारा किस कर उसे अपनी बाहों में उठा बाथटब के बाहर निकल जाता है। फिर बाथटब ले उसे पहना देता है और उसे दोबारा गोद में उठा अपने बेडरूम में ले जा बेड पर लिटा देता है। तभी उसकी नज़र रूही के कांपते शरीर पर पड़ती है, जिसे देख वे समझ जाता है कि उसकी रूह को ठंडे पानी में रहने की वजह से और गीले कपड़ों की वजह से ठंड लग रही है। जिसे महसूस कर रुद्र तुरंत अपने वार्डरोब की तरफ जा अपनी ब्लैक कलर की एक शर्ट निकालकर उसे लेकर रूही के पास आता है। फिर रूही के बाथरोब को उसके शरीर से अलग कर देता है। अब रूही उसके सामने अपने जींस और अंदर के कपड़ों में थी, जिसे देख रुद्र का शरीर गर्म होता हुआ महसूस हो रहा था। लेकिन तभी उसकी नज़र रूही के शरीर पर जाती है, जो उसके रफ करने की वजह से पूरी तरह से लाल हो चुकी थी, जिसे देख रुद्र अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है। अब उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वे अपनी रूह के साथ इतना ज्यादा रूड क्यों हुआ, लेकिन अब वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि रूही के मामले में वे खुद पर से अपना कंट्रोल पूरी तरह से खो देता है। उसे इस बात का खुद एहसास नहीं होता कि वे क्या कर रहा है। फिर कुछ सोच वे दोबारा से अपने वार्डरोब की तरफ बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया विला, रूही के जाने के बाद परी और अर्जुन वे दोनों सिंघानिया विला आ गए थे और आकर हमेशा की तरह सोफे पर पसर जाते हैं, जैसे वे कॉलेज ना जाकर कहीं पत्थर तोड़ कर आ रहे हों और सारी मेहनत इन दोनों से ही करवाई गई हो। तभी उन्हें अपने सामने कोल्ड ड्रिंक और पनीर टिक्का दिखता है, जिसे देख उनकी आंखों में चमक आ जाती है और वे तुरंत कोल्ड ड्रिंक और पनीर टिक्का उठा खाने पीने लगते हैं, इस बात के अनजान की कोई उन्हें गुस्से से देख रहा है। ये कोई और नहीं, कामना ही थी, जो अपने लिए ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक और गरम गरम पनीर टिक्के बनवाकर अभी अभी रखवाए थे और वे अभी अभी एक बोल में ढेर सारा रसमलाई लिए आराम से अपनी आंखें बंद करके खा रही थी। लेकिन जैसे ही वे अपनी रसमलाई खत्म कर दूसरा रसमलाई खाने के लिए अपनी आंखें खोलती हैं, लेकिन अपने आंखों के सामने परी और अर्जुन को अपनी कोल्ड ड्रिंक और पनीर टिक्का खाते हुए देख गुस्सा हो जाती हैं और तुरंत अपनी रसमलाई की कटोरी को वापस टेबल पर रख परी और अर्जुन के हाथ से अपना कोल्ड ड्रिंक और पनीर टिक्का छीनते हुए गुस्से में बोली, देखो अगर तुम लोगों को भी ये सब खाना और पीना है तो तुम जाकर खुद अपना बनवा लो, लेकिन मेरे सामान पर बिल्कुल भी नजर मत डालो, क्योंकि मैं तुम दोनों को इसमें से एक टुकड़ा भी नहीं देने वाली। परी और अर्जुन कामना की बात को सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और परी बोली, बुआ आप खुद दूसरा बनवाकर खा लीजिए, हमें तो यही खाना है। इतना बोल वे कामना के हाथ से प्लेट लेने लगती है, जिसे देख कामना अपना प्लेट पीछे करते हुए बोली, सोचना भी मत वरना मैं तुम दोनों की शिकायत भैया से करूंगी, फिर तुम लोगों को समझ में आएगा। कामना की बात सुनकर परी चुप हो जाती है और सुमन को आवाज लगाते हुए कहती है, मॉम आप कहाँ हैं? प्लीज हमारे लिए भी जल्दी से पनीर टिक्का बना दीजिए ना। इतना बोल परी वापस से सोफे पर बैठ जाती है, मगर कुछ देर इंतजार करने के बाद भी जब उधर से कोई आवाज नहीं आता तो परी अर्जुन से कहती है, ये मॉम की आवाज क्यों नहीं आई? वैसे तो हमारे कॉलेज के आते ही हमारे लिए नाश्ता तैयार करके रखती है, परी की बात सुनकर अर्जुन कुछ कहता उसके पहले ही कामना अपना मुंह बनाते हुए बोली, अरे तेरी माँ दिखेगी तब ना, जब वे यहाँ होगी। कब से अपने कमरे में गई है लेकिन अब तक वापस ही नहीं आई। पता नहीं भाभी कमरे में बैठे बैठे क्या कर रही है। इतना बोल कामना आराम से अपना पनीर टिक्का खाने लगती है। वही कामना की बात सुनकर परी अर्जुन को देखती हुई बोली, मॉम कमरे में है कब से? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी तबीयत खराब हो गई है? चल हम एक बार देख कर आते हैं। परी की बात सुनकर अर्जुन भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है और अपना सर हाँ में हिला देता है, जिसके बाद दोनों सुमन के कमरे की तरफ चले जाते हैं।
कुछ देर में दोनों सुमन के कमरे से बाहर खड़े थे और जैसे ही दरवाज़ा खोल अंदर जाने वाले थे, वैसे ही उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, जिसे सुन वे दोनों रुक जाते हैं और दरवाज़ा, जो पहले से ही हल्का सा खुला हुआ था, उसे हल्का सा और खोल अंदर देखने लगते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी नज़र अंदर के नज़ारे पर पड़ती है, वे दोनों शॉक हो जाते हैं।